इस्कॉन बलराम देश फ्राइडे के इवनिंग के सत्संग में आप सबका स्वागत है। और केले पत्र के ऊपर 21 प्रकार का प्रसाद पाने के लिए आप सब पधारे हैं, इसलिए कथा को बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। कानन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहाँ है कानन? कानन कान पकड़ो, कहाँ है? अंदर है। हरे कृष्ण। सो वी आर डिस्कसिंग भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 18 विच इज the chapter 18 Srila Prabhupada said the perfection of renunciation. This is something wonderful to learn as a good teacher, as a Jagat Guru Sri Krishna. He started second chapter as a summary of the Gita. He has given something in short, and then he made Arjuna to ask some question. He made him inquisitive. Arjuna asked certain questions, and then Sri Krishna elaborated on the questions in 17 chapters. Then 18th chapter he has again given the conclusion of the whole Gita. Just the all the sense he has given in 18th chapter. Sri Prabhupada has written 18th chapter is the again summary of the whole Gita. So this is a good way of teaching. Start with something very simple and brief, make the people to ask questions, and then you elaborate on them, and then when it is over, then again recapitulate and make a summary. So 18th chapter is summary of Bhagavad Gita. The section which we are discussing now, this section is, for any action there are three parts: the doer, the knowledge about the action, and the action itself. Jnanam, karta, karma. Jnanam means knowledge, karta means doer, karma means action. So three things for any work to accomplish, there are three things necessary: knowledge about the work, work itself, and the person who is doing the work, the worker. Now Sri Krishna is speaking, all these three, they have influence of three modes of material nature. It means the knowledge is of three modes of material nature: knowledge in mode of goodness, knowledge in mode of passion, and knowledge in mode of ignorance. Similarly, the karta or the doer is in mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. And similarly, the karma or the action is in our three modes of nature. So that is the section which we are dealing. So jnana is of three types. What are the three types of jnana? You have finished these chapters. You remember what are the three types of jnana? No? Then kela patar? No. If you tell me this, then kela patar will be there. Otherwise, Hare Krishna. Okay. In other words, knowledge concerning the spirit soul beyond this body is called the knowledge in mode of goodness. Knowledge in mode of goodness is, soul is different than body. This is knowledge in mode of goodness, right? Next. The knowledge producing many theories and doctrines by dint of mundane logic and mental speculation is the product of mode of passion. So people have a different concept. Oh, body, soul, they are together, mind is independent. So this all psychological different varieties called mode of passion. Many doctrine now. The knowledge concerning only with the knowledge of the body. Comfortable. Only knowledge by to keep the body comfortable. No knowledge of the soul is in the mode of goodness. So, what do you think? In this world, people are in which? People have knowledge of which mode? Ignorance. How to keep body happy? That's what their whole knowledge is. The whole world is working with this intention, how to keep body happy. This is the knowledge in mode of ignorance. Right? So now never forget three types of knowledge. Knowledge of goodness is? Body and soul are different. Soul is higher, body is lower. Body is coming from lower prakriti, soul is higher prakriti. Seventh chapter of Bhagavad Gita. Aparayam itastomanyam prakriti jiva bhutam. Okay? So knowledge in made of mode of portion is different furies. Soul exists, soul. In animal there is no soul, only human being soul. We can kill animal mode of passion. Hindi mein? Hindi mein bolo. Kele ke patte pe bhojan karna Hindi mein bola tha maine. Important baat mujhe Hindi mein bolo. वो ज्ञान जिसमें आत्मा को शरीर से अलग माना जाता है, आत्मा मुख्य है, शरीर नाशवंत है, आत्मा अमर है, ये तत्वगुण का ज्ञान है। जहाँ कहा जाए कि आदमी में आत्मा होती है, पशु में आत्मा नहीं होती है, इसलिए उसको मार के खा सकते हैं, नहीं पेड़ में आत्मा नहीं होती है, तो ये ऐसे अलग अलग थ्योरी बनाना ये मोड ऑफ पेशन, ये रजोगुण का ज्ञान है। तमोगुण का ज्ञान है, आत्मा का भी पता नहीं है, कुछ और भी जानकारी नहीं है, अरे हमको खा पी के मौज करनी है, ये तमोगुण का ज्ञान है। तो तीन प्रकार का ज्ञान हो गया, और ये तीन प्रकार का ज्ञान समाप्त होता है 22वें श्लोक में। 23वें श्लोक में आता है, 23 वर्ष में आ गया, नियतम संग्रहितम असंग द्वेषम कृतम, कृतम का मान अफल प्रेषण कर्म। तो कर्म तीन प्रकार का है, कर्म तीन प्रकार का एक्शन है ना, इज ऑफ थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर। तो सतोगुण का एक्शन कैसा है, देखो यहाँ लिखा है सत्सात्विकम उच्यते। सतोगुण का कर्म कौन सा है, पहले बात अकर्मा तो सतोगुण से भी ऊपर है। नियतम, नियतम का मतलब शास्त्र के नियमों के अनुसार, नियत मीन्स फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्क्रिप्चर। नियतम असंग रहितम, नो अटैचमेंट, काम है करेंगे, काम को काम समझते, उसमें अटैचमेंट नहीं है। राग द्वेषित, न ही उसमें अटैचमेंट है, न ही उसको द्वेषित मीन्स नाइदर हेटिंग इट एंड नाइदर गेटिंग इट मोर फेवरेबल और अनफेवरेबल, बोथ आर इक्वल। अ फल प्रेक्षुना, देर इज नो डिजायर फॉर गेटिंग द फ्रूट ऑफ दैट वर्क। तत्काम सात्विक, दैट वर्क इज कॉल्ड इन मोड ऑफ गुडनेस। The action which is regulated by वो काम, वो कर्म जो नियमित है, किसके नियम में, शास्त्र के। रेगुलेशन इज ऑलवेज बाय शास्त्र, गुरु, गुरु शास्त्र साधु, दैट कर्म नंबर वन। विच इज परफॉर्म विदाउट अटैचमेंट, विदाउट लव और हेटर्ड। कर्म को कर्म शब्द के करना, उसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, और नहीं उससे कुछ द्वेष है कि नहीं करूंगा, बुरा है नहीं करूंगा, नहीं। और चौथा चीज है विदाउट डिजायर फॉर फ्रूटिव रिजल्ट, और उस कर्म में किसी भी फल की इच्छा नहीं है, ये सात्विक कर्म है। इसके बाद का कर्म है यत्तु कामे सुना कर्म अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसं उदाहृतम्। अब रजोगुण का कर्म कौन सा है, यत कामे सुना कर्म, कामे सुना कामना है, बहुत सी इच्छा है, इसके इस काम में मुझे ये प्राप्त होना है। डायरेक्शन परफॉर्म विद ग्रेट एफर्ट बाय वन सीकिंग टू ग्रेटिफाई हिज डिजायर्स, कामे सुना इच्छा, काम इच्छा मीन्स मेनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए काम करता है। और कैसे काम करता है, स अहंकार है ना, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने ये करके दिखाया, देखो मेरा कितना अच्छा काम मैंने किया है, स अहंकार है ना, सेंस ऑफ फॉल्स ईगो। क्रिया बहुला आसाम, बहुला आसाम मतलब बैल की तरह काम करना, बहुत बड़ा प्रयास लगना, सुबह से शाम तक गया मजदूरी करता है, काय के लिए करता है, मैंने काम किया, दुनिया को दिखाऊंगा कितना मेरा अच्छा काम है। तत्राजसम उदाहरतम, उसको रजोगुण का काम कहते हैं। दैट वर्क इज कॉल्ड इन मोड ऑफ बट एक्शन परफॉर्म विद ग्रेट एफर्ट मीन्स बहुला आसाम, एंड बाय वन सीकिंग टू ग्रेटिफाई हिज सेंसेस, काम एक सुना, enacted with sense of false ego, sahankarena is called action and mode of passion. Now is the verse which is supposed to be discussed today. आज का श्लोक जो करना है वो अब आएगा बोर्ड पे, देख लीजिए पढ़िए। पढ़िए हमारे साथ, अनुबंधम क्षमहिंसाम अनपेक्ष पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। तो पहले ज्ञान तीन प्रकार के गुणों का, फिर कर्म, आज ये कर्म का तीसरा प्रकार है, इसके बाद क्या आएगा, कर्ता तीन प्रकार का, सतोगुण का कर्ता, रजोगुण का, तमोगुण का। तो ये कर्म का विभाग चल रहा है 18वें अध्याय में। तो अब इसमें क्या है, पहले अनुबंधम, अनुबंधम का अर्थ क्या होता है, बंधम का मतलब आपको सबको मालूम है, बंधन का मतलब बॉन्डेज, अनुबंधम का मतलब गलत काम करेंगे तो फ्यूचर में बॉन्डेज होगा। अनु मीन्स टू फॉलो, इफ वी डू समथिंग रॉन्ग वी विल बी गेटिंग दी बॉन्डेज ऑफ सफरिंग इन फ्यूचर। सो अनुबंधम मीन्स आ फ्यूचर बॉन्डेज, अनुबंधम मीन्स फ्यूचर, अनु मीन्स इन फ्यूचर। नाउ वी डू वर्क, अभी काम करेंगे, आगे चल के बंधन पड़ेगा, तो जिसको इसकी परवाह नहीं है आगे क्या होगा देखा जाएगा, आगे की जिसको चिंता नहीं है, फ्यूचर के बंधन में के नरक में जाएगा उसकी चिंता नहीं है, दंड मिलेगा उसकी चिंता नहीं। जैसे चोर चोरी करता है उसको मालूम नहीं है पुलिस पकड़ेगी, तो उसको मालूम है फिर भी चोरी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, मालूम है ना भाई, किसी का सामान चुराना बुरा है कि नहीं, पुलिस पकड़ेगी दंड मारेगी पता है ना, जेल में जाएगी फिर भी पता है ना, फिर भी चोरी करते हैं ना, तो इसको कहते हैं अनुबंधम। ये फ्यूचर के दे हैव नो फियर दैट इन फ्यूचर दे विल हैव ए बॉन्डेज। सो जो चोरी करना, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना, पराई धन को बुरी नजर से देखना, ये बुरे काम है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे दुनिया के अंदर, तो इसको बोलते हैं अनुबंधम। तो अनुबंधम का अर्थ क्या हो गया, फ्यूचर के बॉन्डेज की परवाह किए बगैर के गलत काम करने से दंड मिलेगा इसकी चिंता नहीं करना। और बुरे काम क्या है संसार के अंदर, मेनली पराए धन की चोरी, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना, और क्या है, दूसरे को मारना, बुराई, जितनी भी बुराइयां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। पहला शब्द क्या अनुबंधम का क्या अर्थ हुआ, भविष्य के बंधन से का चिंतन नहीं करना। नेक्स्ट क्षयम, क्षय का मतलब क्या है, क्षय का मतलब सबको आता है कि नहीं आया, क्षयम। अब क्षय का आपको सुना हूं तो मैं पढ़ता हूं एक श्लोक भगवद गीता का, आप उसमें क्षय का अर्थ समझ लीजिए। कालो अस्मि लोक क्षय प्रवर्धो, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है 11वें अध्याय में, याद है, कालो अस्मि लोक क्षय प्रवर्धो, मैं काल हूं और सारे लोक का नाश कर दूंगा। क्षय का अर्थ क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन। तो क्षय करने का मतलब क्या है, तो ऐसा काम करे जिसमें डिस्ट्रक्शन हो ना, विवर्ड क्षम मीन्स डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा हिंदी में, हानिकारी कार्य, कार्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। डिस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है, एक अपनी डिस्ट्रक्शन करता है, शराब पीता है तो अपना सत्यानाश करता है, डिस्ट्रक्शन हुई कि नहीं, अपना और घर सारे का सत्यानाश करता है कि नहीं, सारे घर का, सारे घर को नाश करता है, धन को नाश करता है, स्वस्थ को नाश करता है, हेल्थ इज डिस्ट्रॉयड, वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड, फैमिली इज डिस्ट्रॉयड। तो ये कार्य हो गया क्षय, नशा करना क्षय का सबसे बुरा कार्य, अपना क्षय करना और फिर दूसरे का भी क्षय करना, फिर दूसरे को भी नुकसान पहुंचेगा ना, जब अपने को पहुंचेगा तो दूसरे को भी पहुंचेगा। हिंसाम, तीसरा शब्द क्या है, हिंसाम, हिंसा का अर्थ क्या है, दूसरे को मारना, एंड डिस्ट्रेस टू अदर्स, दूसरों को, असल में हिंसा का अर्थ है, यहां से एक आदमी सीढ़ी से उतर रहा है, रास्ते में कोई खड़ा हो जाए उसको नीचे उतरने नहीं दे, इसका मतलब किसी के रास्ते को रोकना, उसको हिंसा कहते हैं। जैसे एक बकरी को 10 साल का जीवन मिला है भगवान की तरफ से, कोई उसको 5 साल के बाद मार के खा जाए तो ये हिंसा हो गई, क्योंकि उसके 10 साल में 5 साल काट दिए ना, तो उसको तो 5 साल दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा ना, तो हिंसा हो गई ना। तो ये हिंसा का मतलब ये हुआ किसी के प्रोग्रेस को, किसी के आगे बढ़ते हुए काम को रुकावट डालना। और एक जगह श्रील प्रभुपाद ने हिंसा का अर्थ लिखा है, प्रचार नहीं करना बहुत बड़ी हिंसा है। इफ यू आर नॉट प्रीचिंग देन यू आर डूइंग रियली हिंसा। प्रचार न करना सबसे बड़ी हिंसा है। प्रचार करना चाहिए क्योंकि लोगों को अज्ञान से निकालना चाहिए। तो ये हिंसा का अर्थ है दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे के जीवन में बाधा डालना, रुकावट डालना, उसके प्रोग्रेस को रोकना। जब पौरुषम, पौरुषम का अर्थ क्या है? पौरुषम इंसान के बाद क्या शब्द है? नहीं, हिंसा के बाद क्या है? अनपेक्षा। अनपेक्षा मर्द है अनपेक्षा, अनपेक्षा, पेक्ष अनपेक्षा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग सुनिए, विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। अनपेक्षा का मतलब कि इसका परिणाम क्या निकलेगा उसका पता नहीं है। जो मैं काम कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पता नहीं। अनपेक्षा यानी काम कर रहा है लेकिन उससे क्या होगा उसको पता नहीं है। एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा था, जिस डाली के ऊपर बैठा था उसी डाली को काट रहा था, तो वो गिरेगा उसको पता नहीं है, नीचे गिरेगा डाली काटते हुआ। ये हो गया कि पता नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मेरा क्या होगा। बैठा इस इधर बैठा है और इधर जिसको बैठ के यहाँ से काट रहा है तो क्या होगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो इसको बोलते हैं अनपेक्षा, कि पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, काम ऐसे कर रहा है जिसमें पता नहीं है कि इसके बाद क्या होने वाला है। और कोई ऐसा एग्जाम्पल दो अनपेक्षा का। हाँ जी, कोई अच्छा एग्जाम्पल दो अनपेक्ष का। कॉन्सिक्वेंस का पता नहीं है, आदमी काम करता है तमोगुण का काम कहलाता है। जैसे कि हाँ जी, सिगरेट पीना, अभी तो पीता है और बाद में खांसी होगी, फिर कैंसर होगी, फिर मरेगा, उसकी परवाह नहीं करता है, तो ये तमोगुण का काम हो गया। और कोई अच्छा सा उदाहरण? हाँ जी, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर, विदाउट कंसिडरेशन फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, व्हिच मींस परिणाम की परवाह किए बगैर कोई कार्य करना। लाइफ विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अनपेक्षा। भगवत भावना के बगैर जीवन भी सुनिश्चित नहीं है कि क्या होगा आगे चल के। प्रभुपाद जी कहते थे अभी राजा हो, अगले जन्म में गधा बनेगा, अभी राजा है अगले जन्म में गधा बनेगा, तो ये अनपेक्ष हो गया। अभी तो बड़ा धनी सेठ है लेकिन काम ऐसा कर रहा है, धन के ऊपर ऐसे चढ़ के बैठा कि अपने घर में सांप बन के बैठा होगा। और ये तो सुना है कथा नारद जी की, नारद जी आया भक्त को बोला तुम चलो भगवान के नाम, बोला नहीं नहीं बच्चे बड़े हो जाए फिर करूंगा, बच्चे बड़े हो गए, बोला आप चलो, बोला बच्चे बड़े हो गए शादी हो जाए फिर चलूंगा, शादी हो गई, बोला आप तो चलो, बोला बच्चों के बच्चे देखूं फिर चलूंगा, अभी बच्चों के बच्चे देखे आप चलो, बोला आप देखो ये बच्चे अकेले भाई सब चले जाते हैं, बेवकूफ ध्यान नहीं करते, मैं देखता हूँ बच्चों को। मर गया, मर गया तो घर के बाहर कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बन गया तो नारद ने कान में कहा अभी तो चलो, बोला देखो ये घर वाले बेवकूफ सारा घर खुला छोड़ जाते हैं, मैं बैठ के चौकीदारी करता हूँ, मैं चौकीदारी नहीं करूँ तो घर का क्या होगा। नारद जी ने बोला अब तुम चलो तो सही, बोला नहीं अभी नहीं चलूंगा, फिर मर गया काकरोच बन के बैठा हुआ है। नारद ने कहा आप तो चल भाई, बोला इतना जूठन फेंकते मैं नहीं खाऊं, कितना खराब होता है, मैं बैठ के सब आराम से खाता रहता हूँ, मेरे घर का है खराब हो रहा है। तो ऐसा कितने जुर्म में जाता है लेकिन चिंता करने को तैयार नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, काम करते हैं मूर्खता की तरह, फिर आगे गधे बनेंगे कि गधे चराने वाले बनेंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो ये अनपेक्ष का मतलब है, अभी ऐसा काम करता है उसका पता नहीं है कि आगे क्या परिणाम निकलेगा। तो ये अनपेक्ष का अर्थ हो गया। फिर एक शब्द और क्या है? पौरुषम। पौरुषम का अर्थ क्या है? अरे भाई तुम ये काम कर रहे हो किसने बताया? मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, इसको बोलते हैं पौरुषम। सेल्फ, दिस पौरुषम मीन्स सेल्फ सैंक्शन, मैंने कहा ऐसे करना है इसलिए कर रहा हूँ।
अरे भाई शास्त्र में शास्त्र हम नहीं जानते, हमने जो कहा वो हो गया, हमारी इच्छा ऐसे होना चाहिए, हो गया। पौरुषम, जैसे उसको अच्छा लगता है वैसे करता है, वो अपने मन मानी करता है जैसे उसका लगे। तो वो किसके ऊपर चलता है? मनोरथ, मन के रथ के ऊपर चलता है। मेरे मन ने ऐसे कह दिया ऐसे करेंगे, तो ये पौरुषम का अर्थ है अपने स्वयं का प्रयास। अब क्या रह गया? मोहाद आरभ्यते। मोहाद, मोहाद का मतलब बड़े मोह से, बड़े मोह का अर्थ होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब वो अभी धोखे में है, वो क्या कर रहा है उसको मालूम नहीं है क्या कर रहा है। और आरभ्यते का अर्थ है जो बिगिनिंग करता है, काम शुरू करता है मोह से, क्या कर रहा है मालूम नहीं है, क्यों कर रहा है मालूम नहीं है, इससे दूसरे का नुकसान होगा मालूम नहीं है, अपना अहित होगा ये भी मालूम नहीं है। ऐसे काम को जब तक तामसम उच्यते, ऐसे काम को तमोगुण का कर्म कहते हैं। तो अब इसकी ट्रांसलेशन देखिए, दैट एक्शन परफॉर्म्ड इन इल्यूजन, मोह के कारण काम किया जाए। कौन सा काम मोह के कारण होता है? इल्यूजन में कौन से काम करते हैं हम? नशा करना सारा इल्यूजन में है। All the intoxication is an illusion. All the illicit sex is illusion. All the gambling is illusion. Huh? और क्या है? चौथा क्या है? Meat eating is also unaffected. We don't know that we will be punished by the animals in the future. So this all is, all these four don't are illusion. All these four don'ts should be considered illusion. ये असल में मोह है, अज्ञानता है, जानते नहीं है कि इनका परिणाम क्या निकलेगा। तो ये हो गया रिएक्शन परफॉर्म इन इल्यूजन इन डिसरिगार्ड ऑफ स्क्रिप्चुअल इंजेक्शन, शास्त्र का नियम नहीं, अपनी मर्जी से काम करना। बहुत से लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, शास्त्र का कोई नियम नहीं है, कोई शास्त्र ही नहीं है जिसके आधार के ऊपर चलते हो, अपनी मर्जी से चला दिया कुछ चीज। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? एंड विदाउट कंसर्न फॉर द फ्यूचर बॉन्डेज और बाय वायलेंस और डिस्ट्रेस, दूसरे को दुख मिलेगा या दूसरे को के ऊपर हिंसा होगी उसकी भी चिंता नहीं करते। कास्ट द अदर्स इज सेड टू बी द मोड ऑफ एपिडेमिक, भाई गोली चलाए शहर के बीच में चौराहे के ऊपर, कौन मरेगा कोई चिंता नहीं। ये काम कैसा हो गया? तमोगुण का काम। कितने लोगों को नुकसान होता है कोई चिंता नहीं है, कौन मरता है कोई चिंता नहीं। तो ये तमोगुण की प्रवृत्ति के काम कहलाते हैं। जिस वहाँ ये काम कहता है तमोगुण का काम है। तो ट्रांसलेशन का क्या अर्थ हो गया? ट्रांसलेशन समझ में आई? हमको ये क्यों पढ़ना चाहिए कि हमें तमोगुण के काम छोड़ने चाहिए? भगवद गीता में तीन गुणों का वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण का सीधा उद्देश्य है तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में आओ। तो हमारा कर्म सत्वगुण का होना चाहिए, हमारा ज्ञान सत्वगुण का होना चाहिए, हमारा जीवन सत्वगुण का होना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण को निम्न गुण, नीचे के गुण का है, लोअर मोड्स कहा गया है। और भगवत श्री प्रभुपाद ने कहा, आई हैव एस्टेब्लिश्ड इस्कॉन टू ब्रिंग पीपल टू सत्वगुण। इस्कॉन की स्थापना ही सत्वगुण में लाने के लिए की गई। तो रजोगुण और तमोगुण का कर्म क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमको वो छोड़ना है। तो इसका मतलब अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जैसे नशा नहीं करेंगे, पशु हत्या नहीं करेंगे क्योंकि हिंसा है। तो ये चार नेम इल्यूजन है, तो निश्चित बचेंगे, ये सिद्धांत हो गया। और दूसरा क्या करेंगे? शास्त्र के अनुसार काम करेंगे। शास्त्र ने क्या कहा? भाई भगवान का नाम, भाई भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो तो हम भक्त बनेंगे, ये शास्त्र का नियम का पालन हो गया। तो हम शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करेंगे। वी विल डिसिप्लिन अवर लाइफ बाय द गाइडेंस ऑफ द स्क्रिप्चर एंड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, साधु गुरु और शास्त्र के शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। जैसे रोज हमने नियम बनाना है भगवान के नाम जपने का, क्योंकि ये शास्त्र का विधान है। शास्त्र कहता है मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा कलयुग में भगवान के नाम के जपने से होती है। भगवान की पूजा सतयुग में ध्यान से होती थी, भगवान की पूजा त्रेता युग में यज्ञ से होती थी, भगवान की पूजा द्वापर युग में पूजा मूर्ति की होती थी श्री विग्रह की, कल युग में भगवान की पूजा भगवान के नाम जपने से होगी, अपने घर में कहीं भी कर सकते हैं। तो क्या शास्त्र ने कहा है कि मेरी पूजा करो, कैसे पूजा करें, भगवान का नाम जपो। कभी भी ये काम नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ तप दान कर्म न त्यजेत, यज्ञ तप और दान के कर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए, जप यज्ञ रोज करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ रोज करना चाहिए। कौन सा तप करना चाहिए, एक घंटा बैठ के कथा रोज सुननी चाहिए, गीता भागवत की, शास्त्र कहता है ये तपस्या होगा। कौन सा दान करना चाहिए, दूसरों को शिक्षा देके ज्ञान का दान करना चाहिए, प्रसाद लाके वितरण करके अन्न का दान करना चाहिए, अन्न दान, वस्त्र दान, ज्ञान दान, भूमि दान, ये बहुत सारे दान है जो करने चाहिए जीवन में, ये कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये शास्त्र में कहा है ये काम करना चाहिए, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो साधुओं को भी पवित्र करते हैं, पावनानी मनीषिणी नाम। तो हमारे को शास्त्र के नियम से अपने जीवन में काम करने चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, One has to give account, टाइम अभी तो भगवान को भोग लग रहा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा भगवान। बाकी भी नहीं बजी है, बाकी तो बजने दो, सबकी नजरें पतल के ऊपर है, केले का पतल ग्रीन। हरे कृष्ण। तो हमारे को क्या करना चाहिए, मोह से बचना चाहिए, शास्त्र के नियम का पालन करना चाहिए, और भविष्य के बंधन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भविष्य में हमको कलंक लगे। भविष्य में कलंक लगे मीन्स, कलंक किसको बोलते हैं, स्पॉट। अरे ये तो इस्कॉन का भक्त है और ऐसा काम कर रहा है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जो आगे चल के संस्था को अथवा धर्म के नाम पे कलंक लगे। हमारा जीवन बहुत शास्त्र के अनुशासन वाला होना चाहिए। तो फ्यूचर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले लोग कहते कुल परंपरा है, हमारे कुल को कलंक नहीं लगना चाहिए, ऐसा काम नहीं करेंगे हमारे कुल को कलंक लगेगा। अब तो कुल को काला करके आते हैं घर से ही, कुल को काला कर दिया, बस हो गया सब काम, जो भी होना है होने दो, क्या फर्क पड़ता है, कुल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, कुल के कूलर बना के और उसमें अंदर चाय पी रहे। कुल ही समाप्त हो गए। पहले तो आदमी को बड़ा ध्यान होता, कुल को कलंक नहीं लगना चाहिए, धर्म की मर्यादा, देश की मर्यादा, कुल के लिए, अरे इस देश के ऐसा काम करते हो तो देश का नाम बुरा होगा कि नहीं होगा। तो हम भगवान के धाम में ऐसा काम करें तो फिर भगवान के धाम के लिए लोग कहेंगे एक ऐसा भक्त है। तो हमारा काम इतना होना चाहिए कि भविष्य में परंपरा के ऊपर, कुल के ऊपर, धर्म के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। हाँ, तो ऐसा काम करना चाहिए फ्यूचर के बांडेज का। और फिर लिखा है वायलेंस, किसी का भी प्रोग्रेस, विशेष रूप से कोई मंदिर में भक्ति करने आए तो कभी उसको काम सेवा से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा उसका धर्म है, सेवा जीव का स्वरूप है, सेवा से हटाना नहीं चाहिए, सेवा करने देना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए जो आते हैं उनको। वायलेंस करने का मतलब है उसको सेवा से रोकना, उसके स्वरूप के काम करने से रोकना, और डिस्टेंस का शोध, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे को हमारे काम से दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए। चाहे हम अच्छा काम कर रहे हैं, मानो हम यहाँ भगवान का सत्संग कर रहे हैं, लेकिन मानो के पास पास में कोई दूसरे पड़ोस में घर में रहता है, बेचारे को दिल का बीमारी है, और यहाँ बैठ के हम पीटे ढोल को ऐसे, उसको हार्ट अटैक हो, ये भी ठीक नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कर्म से दूसरे को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। हम रथ यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा में तो बहुत कूदते हैं, फिर कचरा सारे रोड पे करके जाए तो पूरा शहर नगर दुखी होगा कि नहीं हुआ। तो रथ यात्रा में आगे कीर्तन करने वालों का भी उतना महत्व है जितना पीछे कचरे को साफ करने वाला, उससे ज्यादा महत्व है कि उसको पीछे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बाद में कहे कि दूसरे को दुख हो कि ये क्या हरे कृष्ण वाले देखो कितना कचरा करके गए कितना। तो ये बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए कि दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो काम बुरा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो तमोगुण का काम हो जाएगा। अब पर्पट में चार लाइनें सुन लीजिए। वन हैज टू गिव अकाउंट ऑफ वन्स एक्शन
to the state or to the agents of the Supreme Lord called Yamdutas. Jo kuch bhi hum kaam kar rahe hain, iska account dena padega. Ya to government ko ya Yamdutas ko. Jo bhi hum kaam kar rahe hain, koi na koi humko dekh raha hai. Galat karenge to dand milega, achha karenge to puraskar milega aur prize milegi. Lekin koi na koi humko dekh raha hai. Achhe kaam ko bhi dekh raha hai, bure kaam ko bhi dekh raha hai. Aise nahi hai ki hum jo kar rahe hain koi nahi dekh raha hai. Irresponsible work is destructive because it destroys the regulatory principle of the scriptural injections. Irresponsible work is destructive. Regulative principle Prabhupada ne likha hai, to iska matlab char name ho gaya. Ye char name torna, ye irresponsible hai. ये आदमी अपना दायित्व नहीं निभा रहा है, अपनी जवाबदारी नहीं निभा रहा है. तो चार नियम को ठीक तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र के नियम है, ये धर्म की रक्षा के नियम है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए. It is often based on the violence and is distressing to the other living entities. क्या four things, four sinful activities, they are often based on violence. So many animals are killed, violence. और भी जितने चीजें बनते हैं वो violence से बने. जब यहाँ तक के भक्त लोग तो चमड़े का जूता भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि उस जूते के लिए पशु की हत्या होती है, तो कपड़े के जूते पहनते हैं. तो हिंसा का, हिंसा में इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें. Based on violence and is distressing to the other living entities. The Prabhupada is writing this. अच्छी तरह से देखना चाहिए Prabhupada ये लाइन में क्या लिख रहे हैं. चार नेम में दूसरे को दुख होता है. कितना दूसरे को दुख होता है. बदमाश लोग पर स्त्री संग करके स्त्री को छोड़ के जाए, गर्भवती हो जाए, तो उसका जीवन नाश हो गया कि नहीं हो गया? किसी ने उसके जीवन का ध्यान तो नहीं किया. बेवकूफी के कारण, मूर्खता के कारण, थोड़े भोग के कारण, इल्यूजन में, धोखे में दूसरे की जिंदगी को सत्यानाश कर दिया कि नहीं किया? उसकी जिंदगी खराब हो गई कि नहीं होगी? लेकिन लोग उसका ध्यान नहीं करते. तो ये चार नियम जो है उसको नहीं पालन करना तमोगुण दिख रहा है, वो कारण तमोगुण. ये इस पर्पट से धुलित हो रहा है. यू कैन, आप फील कर सकते हैं कि इस पर्पट के अंदर प्रभुपाद ने क्या लिखा. इट्स नॉट वेरी ओपन, बट यू कैन फील द मीनिंग इज लाइक दिस. Such a responsible work is carried out in the light of one's personal experience. This is called illusion. ऐसे काम वो करता है कि मैंने पहले ऐसे किया था. पहले एक बार चोरी करके आया था, बहुत धन मिल गया था, दोबारा भी चोरी करने जाए तो दोबारा भी मिल जाएगा. ये पता नहीं कि दोबारा मिलेगा कि जेल में जाएगा. This is called illusion. And all such illusory work is product of mode of ignorance. ऐसे सारे काम तमोगुण के कारण होते हैं. सो तमोगुण के कार्य क्या हैं जिनको छोड़ना चाहिए? पशु हत्या तमोगुण का कारण है, मांसाहार तमोगुण का कारण है, नशा करना तमोगुण का कार्य है, विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संग तमोगुण का कार्य है, जुआ करना, धोखा देना दूसरों को, पैसा लेके वापस नहीं देना, ये सब तमोगुण के काम है. और ये सब मोह के कारण किए जाते हैं, लालच के, लोभ के कारण किए जाते हैं. लोभ तो रजोगुण में आता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो तमोगुण का हो जाएगा. तो इन सारे कर्मों से बचना चाहिए. आप अपने प्रयास से नहीं बच सकते, भगवान की सहायता लेनी चाहिए. तो भगवान को क्या कहना चाहिए? कि भगवान हमारे को सद्बुद्धि दीजिए, धीम ही भगवान हमको बुद्धि दो. वैसे बुद्धि भगवान ने सबको दी है, लेकिन भगवान को कहो हमें बुद्धि योग दीजिए. तो भगवान कहेगा फिर मेरा नाम जपो तो बुद्धि योग दूंगा. तेषां सद्युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वं ददामि बुद्धि योगम. बुद्धि योग तब दूंगा जब रोज आप मेरा प्रेम से बैठ के भजन करेंगे. तो हमको क्या करना चाहिए? अपने कर्म को तमोगुण से बचाने के लिए, रजोगुण से बचाने के लिए, सतोगुण के स्तर पे लाने के लिए भगवान को रोज प्रार्थना करनी चाहिए. और सरल प्रार्थना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.